آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
پیش ہیں آج کے مکھیہ سماچار رشالی جین کے ساتھ۔ بڑھتے تیل کے داموں پر پردھان منتری بولے، آسٹریلیائی سمجھتے ہیں سارے حالات۔ بھارت میں بجٹ ستر کا دوسرا چرن آج سے شروع، اور آسٹریلیائی وکٹ کیپر ایلکس کیری نے کہا کراچی ٹیسٹ میں آج کا کھیل پکڑے گا گتی۔ اور اب خبریں وستار سے۔ فیڈرل سرکار کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ آسٹریلیا میں سامانیہ جیون جینے کی قیمت یعنی کاسٹ آف لیونگ کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ دیش میں بڑھتے پیٹرول داموں کو لے کر چنتا بنی ہوئی ہے۔ پردھان منتری اسکاٹ موریسن نے پیٹرول کے داموں کا 2 لیٹر پرتی لیٹر کے آنکڑے کو بھی پار کر جانا روس اور یوکرین کے مدھیے چل رہے تناؤ اور ویشوک دباؤں کا پر ڈالا ہے۔ نیشنل سانسد سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ تیل پر لاگو ایکسائز ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ جنتا کو کچھ راحت مل سکے۔ شری موریسن نے اس پرستاؤ سے انکار نہیں کیا ہے۔ مہینے کے آخر میں آنے والے فیڈرل بجٹ میں اس کی گھوشنا بھی ہو سکتی ہے، لیکن پردھان منتری کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ڈیوٹی کٹوتی خاص فرق نہیں ڈالے گی۔
There is always a lot of speculation before budgets, and so I will leave the government's decisions for budget to that night. That's what's important. But there are many pressures on cost of living, and that's why our tax cuts are so important.
سینیہ بلوں کا کہنا ہے کہ وہ آپاتکالین سیواؤں کے ساتھ مل کر باڑھ کے بعد کے پربھاؤں کو سنبھالنے میں جٹی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پراکرتک آپدا کے بعد وہ نواسیوں کا درد سمجھتے ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز اور کوئنز لینڈ کے کئی سمودائے باڑھ کے بعد کی صفائی پرکریا میں جٹے ہیں۔ پچھلے ہفتے آئی باڑھ میں دونوں ہی راجیوں میں کئی زندگیوں کا نقصان ہوا اور کئی گھر تباہ ہو گئے۔ میجر جنرل ڈیوڈ ٹومی کا کہنا ہے کہ باڑھ راحت کاریہ میں لگی ٹاسک فورس میں لگ بھگ 7,000 کرمی اور 9 ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔
In northern New South Wales, particularly in the Lismore government area, our heavy plant operators continue to clear the debris and restore access to services.
وکٹوریا میں لگ بھگ 246 ملین ڈالر کی راجیہ سرکار ٹرائل اسکیم کے تحت وہاں کے کیجول کامگاروں کو اب پیڈ سک لیو مل سکے گی۔ آسٹریلیا میں پہلی بار آنے والی یہ اسکیم 2 سال کا پائلٹ پروگرام ہے۔ اس کے انترگت کیجول اور کانٹریکٹ کامگاروں کو راشٹریہ نیونتم ویتن کے حساب سے سال کے پیچھے 5 دن تک کی سک یا کیریئر پے لیو مل سکے گی۔ ورک پلیس سیفٹی منتری اینگریڈ سٹٹ کا کہنا ہے کہ اس نئی چھٹی ویوستھا سے ارتھ ویوستھا میں سدھار ہوگا۔
We are targeting those industries that have the most insecure forms of employment and levels of employment, and that includes our restaurant industry, food services, hospitality, also security and cleaning, and that will be phase one. There'll be about 150,000 workers eligible to take part in the scheme, and we will look over the next 2-year trial period to what other industries we might be able to add.
کوئنز لینڈ کے سواستھیہ منتری نے سوچنا دی ہے کہ وہ کورونا سنکرمت ہو گئی ہیں۔ راجیہ میں لگ بھگ 4,000 نئے کورونا سنکرمن اور 2 مرتیو درج کیے گئے ہیں۔ ایوٹ ڈاٹ نے بتایا کہ انہوں نے کورونا کے ہلکے لکشن محسوس کر ہیں، اور وہ شکشا منتری گریس گریس کے بعد سنکرمت ہونے والی کوئنز لینڈ کی دوسری منتری ہیں۔ سوشری ڈاٹ کا کہنا ہے کہ وہ پورن ٹیکہ پا چکی ہیں اور فی الحال گھر پر ہی ایکانت واس کر رہی ہیں۔ व्यापार और पर्यटन मंत्री डैन टेहन का कहना है कि क्रूजिंग उद्योग आगामी 17 अप्रैल से फिर एक बार सुचारू हो सकेगा। श्री टेहन ने स्काई न्यूज से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बुधवार तक इसका आधिकारिक फैसला घोषित भी कर दिया जाएगा।
We now see absolutely no reason why we can't make that formal announcement. And now that we've got New South Wales, and I'm pretty sure we're going to have Queensland on board, my expectation is those protocols at the state level will be finalised in the next couple of days. And my hope is Wednesday we'll be officially announcing that it's 17 April.
کروز جہاز آسٹریلیائی تٹوں سے 2 سال پہلے کورونا مہاماری کی شروعات سے ہی پرتبندھت کر دیے گئے تھے۔ मुंबा के पदासीन राजा और रानी आज मेलबर्न की सड़कों पर जनसमूहों के साथ जलसा मनाने को लौटने से खुश हैं। चैनल 9 के न्यूज रीडर पीटर हिचनर और रेडियो सितारा फिफी बॉक्स इस साल के चुने हुए राजा रानी हैं जो परेड में झांकी का हिस्सा रहेंगे। मेलबर्न की लॉर्ड मेयर सैली कैप का कहना है कि विविध समुदाय जैसे ऑस्ट्रेलिया यूक्रेनियाई इस सालाना जलसे के नृत्य समूहों का हिस्सा रहेंगे।
And for 68 years, this festival has been entertaining families, friends, people from across Victoria, and today is going to be a spectacular Moomba parade. There are more than 1,500 performers across so many different groups.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूसी मिसाइल अटैक में 35 लोगों की जान जाने के कुछ घंटे बाद ही यूक्रेनियाई राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नाटो से यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने का आग्रह किया है।
30 missiles were fired for only one Lviv region. As a result of the strike on the International Center for Peacekeeping and Security, 35 people were killed and 134 injured. There was nothing happening there that could threaten Russia's territory. And NATO borders are just 20 kilometers away. I'll reiterate now that if you don't close our skies, then it's just a matter of time before Russian missiles will hit your territory. NATO's territory, houses of NATO citizens.
यूक्रेन के यावोरिव बेस पर तड़के सुबह रूसी विमानों ने 30 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी। पोलिश सीमा से कुल 20 किलोमीटर दूर लवीव स्थित इस बेस को पूर्व में नाटो का प्रशिक्षक केंद्र माना जा रहा था। लवीव का इलाका अब तक यूक्रेन से निकलना चाह रहे लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बना हुआ था। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनकी सेना ने कई विदेशी हथियारों को बर्बाद कर दिया है और भविष्य में भी वे विदेश से आए हथियारों को इसी तरह खत्म करता रहेगा। यूक्रेन में रूसी सेना के हाथों मारे गए अमरीकी पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड के लिए दुनिया भर में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हालांकि उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का बैज पहना हुआ था, अखबार का कहना है कि घटना के समय वे उनके लिए काम नहीं कर रहे थे। द टाइम्स का कहना है कि वे एक प्रतिभावान फोटोग्राफर और फिल्म मेकर थे जिन्होंने सालों तक अखबार में आला दर्जे का काम किया। उनके साथ ही श्री आरंडोंडो का कहना है कि यूक्रेन से भाग रहे शरणार्थियों की एक चेक पॉइंट पर वीडियो बनाते वक्त रूसी सेना ने उन्हें कमर में और श्री रेनॉल्ड को गर्दन पर गोली मार दी थी। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जल्द ही फिर न्यूजीलैंड जा सकेंगे। कोरोना महामारी के दौरान न्यूजीलैंड उन देशों में से रहा जिनके बॉर्डर प्रतिबंध सबसे कड़े रहे। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की सरकार ने पिछले महीने 5 स्तरीय फिर खुलने की योजना को अनुमति दी थी, पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से इस योजना में बदलाव करने पड़े थे। सुश्री आर्डन ने TVNZ को बताया है कि उनकी सरकार इस संबंध में इस हफ्ते के आखिर तक घोषणा कर सकती है।
So Australians just generally were due to come in July, visa waiver countries as well thereafter. We're looking to bring those forward because we believe we can safely do so. We'll be looking to make announcements on the timeframes for that this week.
और अब खबरें भारत से। भारत में संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों सहित कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही बजट सत्र के इस चरण में विपक्ष बेरोजगारी और कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती जैसे मुद्दों को लेकर भी संसद में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकती है। इस चरण के दौरान बजटीय प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी लेना और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडों में शीर्ष है। साथ ही निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए आज बजट पेश करेंगी और सदन में इस पर दोपहर यानी भारतीय समय से दोपहर के भोजन के बाद चर्चा हो सकती है। दूसरी ओर भारत में कोरोना की परिस्थिति पर बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2000 503 नए मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोविड मामलों में 19.6% की गिरावट आई है। सक्रिय मामलों की बात करें तो उनकी संख्या 36,168 है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 4,377 लोग भारत में ठीक हुए और भारत में पिछले 24 घंटों में 4,61,318 टीकों को वितरित किया गया है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.60 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 73 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी का कहना है कि आज कराची में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच का खेल तेजी से आगे बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दो दिन में बल्लेबाजी कर अच्छी बढ़त बना ली है। पहली पारी के अंत में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 505 रन रहा है। उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 160 रन और कैरी ने 93 रन जोड़े। कैरी कहते हैं कि पिच अब खराब हो रही है जिससे गेंदबाजी और भी दिलचस्प हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन से गेंदबाजी शुरू करेगा।
I think the wicket's starting to show a little bit of life. It's inconsistent. It's some patches are starting to open up a little bit. So I think the game will move quicker.
और अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी उमस के साथ धूप छांव का मौसम बना रहेगा। अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में हल्की बरसात की आशंका है जहां अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में हल्की बरसात की आशंका है। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी कल धूप छांव का मौसम रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बारिश के साथ तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।